बहुत अहम मौजू है, क्योंकि जनूबी एशिया में अभी हम हिसाब लगा रहे थे, आपने जो आदाद शुमार दिए थे कि तकरीबन 600 मिलियन से ज़्यादा
जी
लोग जो हैं उनके पास साफ़ पानी नहीं है, लेकिन अगर हम जनूबी एशिया पर नज़र डालें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, सिर्फ इन तीन ममालिक पे इनकी पॉपुलेशन इससे कहीं ज़्यादा है, और सबको मालूम है कि कितने बहुत ही कम परसेंटेज है जिनके पास साफ़ पानी है।
बिल्कुल
वाकई नहीं, लम्हे फिक्रिया है हम लोगों के लिए, और कद्र करनी चाहिए अगर हमारे पास साफ़ पानी तक दस्तरसी है, और इसके बारे में सोचना चाहिए। हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ बैठी हुई हैं ताकि खुदा न खास्ता पानी आलूदा हो या दूसरे मसाइल पेश आए और एक बला की तरह हम सब पर नाजिल हो जाए। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर फजलुल्लाह खान से, तशरीफ़ ला चुके हैं, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, बहुत बहुत खुश
वालेकुम
आमदीद।
सलाम, बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर साहब, इसके बारे में बताइए, आलूदा पानी और हेपेटाइटिस क्या ताल्लुक है आपस में?
आलूदा पानी, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, आजकल पूरी दुनिया के अंदर ये एक बड़ा संगीन मसला है,
बिल्कुल
और ख़ासकर वही ममालिक जो तरक्की पज़ीर ममालिक है उनके लिए तो एक और संगीन मसला दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। और ख़ासकर जितने भी हमारे ये जनूबी एशिया के ममालिक है जो आपने ज़िक्र किया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक के अंदर तो जितना भी पानी है, जो हमारे रिजर्वायर्स है पानी के, जो ज़खायर है, उसमें अक्सरियत इस तरह देखने को मिल रहा है कि पानी आलूदा है।
बिल्कुल
और जितने भी जो अगर हम ग्राउंड वाटर की बात कर ले या जो सरफेस वाटर, जिस तरह दरिया, ये नदी नाले वगैरह हो गई, अक्सर जो पानी है उसमें आलूदगी शामिल हो रही है। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, जो इंसानों के अपने हाथ की वजह से, जो दिन ब दिन ये कारखाने बढ़ रहे हैं, लोग कारखाने लगा रहे हैं, और वैसे भी जो ट्रांसपोर्ट की वजह से ये आलूदगी बढ़ रही है, या जो दूसरी भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो केमिकल्स है या जो दूसरी किस्म के जो वेस्ट है उसका
जी
अखराज हो रहा है, घरों से आलूदा पानी निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिला के जो मेन स्ट्रीम हो है, जो पानी के जो ज़खायर हैं उसी पे इसका असर हो रहा है। और यही पानी अगर लोग पी रहे हैं या यही पानी जो दूसरे रिजर्वायर्स है, जिस तरह ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर, इसी के अंदर शामिल हो रहा है, तो ये सब जो पानी है, हमारे जो ज़खायर है, वो सारे आलूदा हो रहे हैं इसकी वजह से। और जो लोग इसी पे इन्हिसार करते हैं, जो पानी के ज़खायर है, जो सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, तो उसी वजह से ही जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, जो पानी से मुतालिक बीमारियां है, या जो वही बीमारियां जो पानी पी के या आलूदा पानी पी के पाए, वो बीमारियां इंसानों के
पेश आ
अंदर
रही है।
पेश आ रही है, उसी में जो सबसे बड़ा इशू है, जो आजकल पूरी दुनिया में और ख़ासकर ये जो मैंने ममालिक बताए, हेपेटाइटस, एक गहरा ताल्लुक़ है इसी का। और जो लोग इन ममालिक में रह रहे हैं या जो इनकी आबादी है, अगर हम स्टेटिस्टिक में जाए, जिस तरह अभी जिक्र हुआ कि 60 मिलियन से ऊपर ये जो लोग पूरी दुनिया के अंदर ये मुतासिर हो रहे हैं, तो इसका जो बुनियादी वजह है और ये जो गहरा ताल्लुक़ है हेपेटाइटिस का और पानी का, ये आपस में इनका एक गहरा ताल्लुक़ है।
डॉक्टर साहब, ये आलूदा पानी, एक होता है कि जो केमिकल्स आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर कारखाने जो हैं वो अपना जो इजाफी पानी होता है, जो फजला होता है, वो नदियों में बहा रहे हैं, समंदर में बहा रहे हैं, ये उसके ज़रिए इस तरह की बीमारियां होती हैं या नहीं? जो इंसानी आलूदगियाँ हैं पानी, रिस्क है जो, यानी गंदगी रिस्क है जो ज़मीन में जाती है, और जो कुदरती ज़खीरे होते हैं, ये उसकी बात है।
असल में अगर हम इस पे बहस कर ले कि जो बीमारी है या जो ख़ासकर हेपेटाइटिस है और आलूदा पानी इसके साथ जो इनका ताल्लुक़ है, तो इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो ये हेपेटाइटिस है, कि इसकी मुख्तलिफ़ अकसाम है,
जी
5 किस्म है हमारे साथ, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। तो इसमें से जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, इसका गहरा ताल्लुक़ जो है ये पानी के आलूदा पानी पीने की वजह से है। और इसमें एक बुनियादी बात यह है कि जो हम पानी पीते हैं, तो या तो हम जो अंडरग्राउंड वाटर है वही पीते हैं या जो सरफेस वाटर है वही पानी हम पीते हैं,
बिल्कुल
तो यही पानी जो है मुख्तलिफ तरीक़े से ये आलूदा हो रहा है, या तो जो इंडस्ट्रीज़ है उसके जो वेस्ट है वो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, या जो घरों का आलूदा पानी है या उसी की वजह से ये आलूदा हो रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो पानी हम पी रहे हैं और जो हेपेटाइटिस ए और ई, इसके जो वजह है कि किस तरह ये फैल जाता है, तो इसकी मैं बुनियादी बात यह है कि ये ओरोपिकल रोड से, जो मतलब जो पुजला होता है या जो गटर का पानी होता है, वो किसी तरीके से अगर दूसरे पानी से मिल रहा है या जो पानी का ज़खीरा है उसको आलूदा कर रहा है, तो उस वजह से ये जो वायरस है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का जो वायरस है ये इसी के अंदर जा रहा है। और वही पानी अगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे बूढ़े जो भी है, तो वही पानी अगर हम पी रहे हैं तो वही वायरस पानी के ज़रिए अंदर चला जाता है। और इसके अंदर एक और बात ये अहम है कि जो वायरस के मुख्तलिफ़ अकसाम है, हेपेटाइटिस वायरस के मुख्तलिफ़ अकसाम है, इसमें ये जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ए ये कंटीजियस है, मुतअद्दी है, तो ये एक
बिल्कुल
इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो सकती है। और ख़ासकर जो हम खुराक खाते हैं, तो इस तरह के जो खुराक जो कंटामिनेटेड वाटर, इसमें जो आलूदा पानी हो वो ही चला जाता है, या इस तरह की खुराक है जो हम बग़ैर उसको पकाए हम खा रहे हैं, तो इसी के अंदर भी ये चांसेस है कि ये जो हेपेटाइटिस का वायरस होता है, हेपेटाइटिस ए और ई खासकर, ये चला जाए। तो जो ओरोपिकल रूट है या पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है, ये इसमें बुनियादी किरदार है, और इसी तरीके से ये मुंतकिल हो जाता है।
डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, बहुत अहम मौजू है और इंशाल्लाह के बहरहाल ये कहा जा सकता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं खुसूसन जनूबी एशिया में, क्योंकि ये अलबत्त दूसरी जगहों में देखी जा रही है ये चीज़, लेकिन खसूसी तौर पर जनूबी एशिया की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों का इलाका है और उम्मीद है कि जल्द अज़ जल्द ये मसाइल हल हो सकें, हुकूमतें तवज्जो दें और ख़ुद अवाम तवज्जो दें।
हसन भाई, हमारे पास सवाल आया आज के मौजू के हवाले से, और दौलत बाखरी साहब भेजते हैं सवाल, लिखते हैं इस बीमारी की अलामतें कौन सी हैं, मतलब ये कि अगर बीमारी आई है आलूदा पानी पीने की वजह से, हेपेटाइटिस हुआ है,
जी
तो कैसे मालूम होगा और इसकी शुरुआत कैसे होगी, बताइए।
जी डॉक्टर साहब,
पानी की वजह से जो हेपेटाइटिस होता है, खासकर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, इसकी जो अलामत है वो कुछ दिनों बाद शुरू हो जाते हैं और नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम बात है, जो अगर हम अलामत पे बात कर ले, तो इसमें सबसे अहम बात और सबसे पहली बात तो यह है कि मरीज़ के अंदर सबसे पहले तो बुखार की वो शिकायत होती है, उसके बाद पूरा इनका जो जिस्म होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसको वीकनेस की शिकायत होती है, इसके बाद उनके जो निज़ाम इन्हज़ाम होता है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इनको मसले हो जाते हैं, ख़ासकर नाजिया वोमिटिंग ये चीज़ें होती है, और आखिर में इनकी जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हम बोलते हैं कि इसके जो पेट होता है उसमें इनको दर्द की शिकायत महसूस होती है। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामत है ये इससे वाबस्ता है, और जो हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ई के जो मरीज़ होते हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये ज़्यादा अरसे के लिए ये बरकरार नहीं रहती, लेकिन इसमें ये है कि कुछ वक्त के बाद ये अक्सर ख़ुद ब खुद ये नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है ये उस हद तक ख़तरनाक नहीं है जिस हद तक जो हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी है, और इसकी वजह से जितने भी लोग मुतासर हो रहे हैं उस हद तक तो ये एक किस्म की वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन उस हद तक ये नहीं है जितना हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी है।
अच्छा, ये सीधा जाके लीवर को मुतासिर करती है ये
जी
बीमारी, तो कितना परेशान होना चाहिए अगर कोई मुब्तला हो जाए ए और ई में बिलखुसूस?
अगर हेपेटाइटिस की हम बात कर ले, तो इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि इसके अंदर इंसान का जो जिगर होता है वही ही मुतासिर होता है, और जिगर एक इस तरह का ऑर्गन है इंसान के जिस्म के अंदर कि जो पूरी जो हमारी जितनी भी हम खुराक खाते हैं, जो हमारी मेडिसिन हम लेते हैं, तो जितनी भी इसकी मेटाबॉलिज्म होती है अक्सर वो लीवर की ही थ्रू होती है, और ये
जी
एक सिस्टम को मेंटेन करता है। तो जो सबसे पहला अटैक होता है हेपेटाइटिस का, जो वायरस होते हैं वो ए या ई है, वो जिगर पे ही होता है, और इसी वजह से जो इनकी कारकर्दगी होती है, लीवर का जो फंक्शन होता है वो मुतासिर हो जाता है। तो जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान के अंदर लीवर काम कर रहा है, जो इसकी इंजाइम्स है, जो इसका फंक्शन है, और जो सारी चीज़ों को वो रेगुलेट कर रहा है, तो इसी दौरान अगर हेपेटाइटिस ए या ई का जो अटैक हो जाता है उसकी वजह से, गंदे पानी की वजह से, और इसका इस तरह का जो पेशेंट होता है उसका लीवर जो होता है फिर वो वही तरीके से अपना वो जो फंक्शन होता है वो नहीं दिखाता, तो मुतासिर होता है। लेकिन जो मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि जो इसके ख़तरनाकी या इस तरह की हम बात कर ले कि ये बहुत ख़तरनाक है, तो उस हद तक तो ये नहीं है, लेकिन एक हद तक परेशानी की बात है, क्योंकि इस तरह हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई के जो पेशेंट्स होते हैं, जो अल्टीमेट हम रिकमेंड करते हैं उसमें जो खुराक खास के ख्याल रखना होता है, उसमें आराम करना होता है, तो परेशानी की बात तो एक हद तक है, क्योंकि अगर इसको हम अवॉइड कर ले और इसको हम इसी तरह छोड़ दे बग़ैर इसको ट्रीट करें या बग़ैर इसको तवज्जो दिए, तो जाहिर बात है जो लीवर का जो फंक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाएगा।
जी
तो इसमें परेशान होने की तो बात है कि इसको एक सीरियस तरीके से लिया जाए, और जो खुराक है, जो खासकर जो आराम वगैरह है, इसको ठीक तरीके से लिया जाए।
डॉक्टर साहब, इसमें बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि साफ जखीरों तक, पानी के साफ जखीरों तक दस्तरसी नहीं है। अभी रुबाब बहन भी एक मिसाल दे रही थी कि अलबत्त जनूबी एशिया में तकरीबन हर जगह ये है कि मालूम जो मिनरल वाटर के जो जिम्मेदार हैं वो खुद मालूम ऐसे नल के पानी से वो लोग पानी भर के दे रहे हैं, दस्तरसी ही नहीं है, क्या किया जाए?
तो इसमें जो अहम बात है, और जो आम लोगों के लिए जिनकी दस्तरस नहीं है कि वो मिनरल वाटर्स ख़रीद लें, तो सबसे जो आसान तरीका है और इसका जो बुनियादी हल है वो ये है कि घर पे अगर आपका पानी इस तरह आ रहा है कि आपको शक है कि इसमें आलूदगी का अंसर शामिल है, तो आप इस पानी को उबाल लें, बॉयल कर लें पानी को, और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट के लिए आप इसको बॉयल कर ले। तो ज़्यादा चांसेस यही है कि जो इसके अंदर वायरस होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का जो वायरस होता है, उसके जो ख़त्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर जो एरियाज इस तरह है कि पहाड़ी इलाके है, हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक आप पानी को उबाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो घरों में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास रिजर्वायर्स है, जो पानी के ज़खीरे हैं, इस पर अगर हम बात कर ले, तो जो डिसइंफेक्शन है या डिसइंफेक्टन हम डालते हैं, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन को डाल के जो पानी के अंदर हेपेटाइटिस ए और ई के जो वायरस होते हैं, उसके मैक्सिमम चांसेस है कि उसको वो किल कर ले। तो ये दो बुनियादी तरीके हैं, और ये अक्सर जो लोग हैं जो उसके दस्तरस में है, ख़ासकर पानी उबालने वाला, ये तो एक घर में, किचन में भी, बावर्ची खाने में भी कोई भी कर सकता है। तो यही तरीके अप्लाई करके एक हद तक हम इसको काबू पा सकते हैं और ख़ुद को महफूज रख सकते हैं।
अहमद रमी साहब हसन भाई हमारे लिए सवाल भेजो, मेरे ख्याल से एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सवाल है इनका, कि अगर किसी जगह में सैलाब या बारिश का पानी जो होता है वो ज़्यादा वक्त के लिए, बारिश आती है या पानी ठहरता है, इन इलाके के लोग किस तरह पानी का इस्तेमाल करें ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। वो इसलिए कि सैलाब के बाद बहुत सी बीमारियों का खदशा होता है,
बिल्कुल
और एक और आलूदा पानी के साथ साथ अगर खुराक पाक साफ ना हो वो भी इस बीमारी की वजूहत में से बन सकती हैं या नहीं?
जी डॉक्टर साहब,
ये एक बहुत अहम मसला है कि जिस एरियाज़ में सैलाब आते हैं, तो ज़ाहिर बात है जो पानी होता है वो अक्सर गंदला हो जाता है, गंदा आलूदा
बिल्कुल
हो
ऐसे
जाता है। और ख़ासकर सैलाब की वजह से जो हमारे ग्राउंड वाटर के जो रिसोर्स होते हैं वो भी आलूदा हो जाते हैं। तो उन एरियाज़ के जो लोग होते हैं उनको ये मसला होता है कि अब हम पानी कहाँ से पी लें। तो ये जो एक मैंने ज़िक्र किया था कि एक अल्टीमेट तरीक़ा यही है कि पानी को उबाल के पिया जाए, और या जो पानी को उबाल के हम किसी तरीके से रेफ्रिजरेटर में या किसी महफूज जगह उसको रख ले, और वही पानी अगर हम इस्तेमाल कर ले तो काफ़ी हद तक हम ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। और उस जो बीमारियां आलूदा पानी की वजह से फैल रही है, हेपेटाइटिस ई हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गई, या जो दूसरी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, तो उस पर काबू पाया जा सकता है। ये एक तरीक़ा है। और जो दूसरा हिस्सा है सवाल का कि जो खुराक खा रहे हैं वही लोग, और ख़ुराक अगर आलूदा है, तो ये मैंने शुरू में भी जिक्र किया और मैंने इशारा किया कि पानी के साथ अगर हम खुराक ले रहे हैं और वही खुराक भी इस तरह के पानी हम डाल रहे हैं कि जो आलूदा पानी है, या जो खुराक हम कहीं से खाते हैं, बाहर से खाते हैं, और वो पकाया हुआ नहीं है, पका हुआ नहीं है, तो इसके अंदर भी ये जो वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की, इसका भी एक ताल्लुक़ है, और वही वायरस खुराक के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है। तो दोनों, पानी और खुराक दोनों की वजह से ये हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की वायरस ये जा सकता है जिस्म के अंदर, और ये जो बीमारी है ये फैल सकती है इसकी वजह से।
डॉक्टर साहब, इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है हेपेटाइटिस बी का? तो जैसे वैक्सीनेशन है इसके लिए भी किया जा सकते हैं या नहीं?
हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के लिए वैक्सीनेशन की अगर हम बात कर ले, तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है, और जो लोग होते हैं एज ए प्रिवेंशन टूल कि अगर आप वैक्सीन ले लें तो आप खुद को बचा रहे हैं, खुद को महफूज रख रहे हैं। लेकिन हेपेटाइटिस ई का जो वैक्सीन है वो अभी तक अंडर ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर है,
वजह क्या है इसकी?
और वजह ये है कि मार्केट के अंदर अभी तक नहीं आया है, अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स है कि 1 साल या 2 साल तक हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो आ जाए, मार्केटेड हो जाए। तो सिर्फ हमारे पास हेपेटाइटिस ए का वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और हेपेटाइटिस ई के लिए अभी तक मार्केट के अंदर नहीं आया है।
डॉक्टर साहब, एक जो मसला इसमें रहता है, एक खुद आपने सैलाब की तरफ इशारा किया है, ये मसला कि जलजले में पेश आ सकता है कि पूरा निकासी का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है, और ये इस तरह की दूसरी जो कुदरती जो बलाएं होती हैं, इसमें भी क्या तरीक़े कार इख्तियार किया जा सकता है कि गंदे पानी से बिलखुसूस, क्योंकि उसमें फिर सीवेज सिस्टम और जो पानी का जो सिस्टम है वो आपस में काफ़ी हद तक बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि मिल गया है, इसके लिए क्या किया जाए?
तो इस तरह की सिचुएशन में तो ज़ाहिर बात है, ये तो भी हमारी एक हुकूमत की और उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस एरिया में अगर सैलाब आया है या जो दूसरी कुदरती आपात है, तो ये तो हुकूमत और जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं इनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी तरीके से जो साफ पानी की फराहमी हो उसको मुमकिन बनाया जाए। तो ये तो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है। और अक्सर हम देखते हैं कि जितने भी डिज़ास्टर्स आते हैं, कुदरती आपात आते हैं, तो जितनी भी वो सप्लाई होती है फूड के साथ, तो पानी की सप्लाई भी होती है मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस है या जो इस तरह की टीमें हैं। लेकिन जो लोग हैं जो उनकी रसाई नहीं है, या अगर इसी तरह के एरियाज़ है कि काबिल रसाई नहीं है, तो जो यही तरीक़ा है कि इनके पास कोई हल नहीं है, तो ज़ाहिर बात है सिर्फ पानी को उबाल के पिया जा सकता है। ये एक तरीक़ा है, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं उनके पास।
बीमारी में मुब्तला हो गए, खुदा न खास्ता ए या ई, बहरहाल लोगों को हो गई, एक तो उसके बारे में बताइए कि इसमें फ़र्क क्या है, इन दोनों में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं जिस्म में या फिर जिगर में, और ये बताइए कैसे ये लोग कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं?
बीमारी की अगर हम बात कर ले, तो अलामत तो हमने बता दिए कि इसमें कौन कौन सी अलामत है। लेकिन ये एक और बात है कि जो ये हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई के जो वायरस है, इसका जो अटैक है और हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई हो जाता है, तो इसमें ये बात है कि जो पूरा जिस्म होता है, ख़ासकर जो चेहरा होता है और जो हमारे अंग होते हैं, वो पीले हो जाते हैं। कभी कभी इसको हम पीलिया भी बोलते हैं। और ख़ासकर ये जो जॉइंटस होता है या बिलीरुबिन लेवल होता है, वो रेज हो जाता है, तो इंसान का जो जिस्म होता है वो पीला पड़ जाता है, और ख़ासकर जो हमारे आँखें होती है। तो इसमें ये एक बात शामिल है। और ये जो बीमारी है जो मैंने आपको बताया भी था कि जो इनकी ख़तरनाक सूरत है वो एज़ कम्पेयर टू बी और सी वो इस हद तक तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो हमारा जिगर होता है वो मुतासिर होता है, इसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो मुतासिर हो जाती है। तो ये बहुत लाजमी है, बहुत अहम है कि इस तरह के जो पेशेंट्स है वो हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी से मुतासिर है, उसको आराम करना चाहिए। और ख़ासकर जो खुराक लेना चाहिए वो हेल्दी डाइट लेना चाहिए, और ख़ासकर जो लिक्विड्स होते हैं वो लेने चाहिए कि जो लीवर का फंक्शन होता है वो किसी तरीके से उसको नॉर्मल किया जाए। तो जितने भी अलामत है हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई के हवाले से, तकरीबन जो अलामत तो वो कामन ही है दोनों की। और यही तरीक़ा अगर दोनों के लिए हम अप्लाई कर ले, खुराक का और एहतियात का और ये आराम का, तो काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 12 वीक्स ये खुद ब खुद ही नॉर्मल हो जाता है।
जिस्म में यानी जैसे खाने की नाली के जरिए जो है वो अगर आलूदा पानी चला गया सिर्फ उसके ज़रिए हो सकता है, यानी नहा वहा रहे हैं तो उससे बाल ख़राब हो जाएं और फिर वहाँ से रिस्क के अंदर चला जाए, नहीं यानी
ये आलूदा पानी है, इसको अगर हम क्रॉनिकली कंज्यूम कर रहे हैं, लंबे आरसे के लिए हम इसको एक्सपोज है, हम इससे मुतासर हो रहे हैं, तो वो अगर हम गंदा पानी या आलूदा पानी निहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर वक्त जो हमारे पास अवेलेबल जो पानी होता है, जो दस्तियाब पानी होता है, वो गंदा ही है और इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें भी ये चांसेस है कि बीमारी हो सके इंसान को। और जो दूसरी बात है खुराक का और पीने का, तो ये अगर गंदा पानी है, आलूदा पानी है, और इसको हम हर वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो दोनों सूरत में ये मुमकिन है कि ये जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, दोनों सूरत में हो सकता है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि हम लंबे अरसे के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हर वक्त हम वही आलूदा पानी या जो कंटामिनेटेड वाटर है वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि बीमारी हो जाए इंसान को।
डॉक्टर साहब, जो लोग आमतौर से रह रहे होते हैं आलूदा इलाकों में, उनसे जब बातचीत करो तो वो अक्सर ये कहते हैं कि भाई तुम लोग जो हो, तुम से ईरान से आए हुए लोग या दूसरी जगहों से आए हुए लोग आते हो फौरन बीमार पड़ जाते हो, हम लोगों को कुछ नहीं होता, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस तुम ही लोग हो जो बीमार हो रहे हो। किस हद तक ये बात सही है और किस हद तक वो जद में या हम जद में क्या है?
इसमें यह है कि जो लोग एक मुसलसल चीज़ के लिए एक्सपोज होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी है, तो इसके अंदर जो कुव्वते मुदाफियात होती है, इसको हम इम्यून सिस्टम होता है, तो एक हद तक वो रेजिस्टेंस होता है जो बीमारी के बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर वही लोग मुसलसल उस चीज़ के लिए वो एक्सपोज है, तो इनका जो इम्यून सिस्टम है या कुव्वते मुदाफियात है वो एक हद तक मजबूत हो गया है, बनिस्बत उन लोगों के जो उस एरिया को जाते हैं, जो बाहर से आते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों के लिए बिल्कुल नए है। तो जितना वही चीज़ें जो माइक्रोब्स है या जो पैथोजन्स है, वही जो बाहर से आते हैं लोग उस पर अटैक्स कर सकते हैं। जो लोकल्स होते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ होते हैं, उनका सिस्टम जो होता है वो एक हद तक टॉलरेंट होता है, एक्सपोज होते हैं हर वक्त, तो एक हद तक उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियात जो होता है वो मज़बूत हो गया होता है। इस वजह से तो बहुत फ़र्क होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं या जो ऑलरेडी उधर मौजूद हैं तो वो कम मुतासिर होंगे, और जो बाहर से लोग आते हैं, ज़ाहिर बात है उनके लिए तो एक नया चीज़ है, तो वो बिल्कुल मुतासिर होंगे इससे।
किसी हद तक उनकी बात सही है फिर
जी
इसका
बिल्कुल।
मतलब। डॉक्टर साहब, आखिर में हम लोगों के पास 1 मिनट है, तो कोई खास आप मशवरा देना चाहते हो नाज़रीन को?
इसमें एक अहम बात है जो हमने बताया कि गंदे पानी का जो मसला है ये पूरी दुनिया में हमें दरपेश है, और ख़ासकर जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, जनूबी एशिया के ममालिक और जितने भी बड़े शहर हैं इसमें ये मसला है, तो बहुत एहतियात करना चाहिए। और ख़ासकर जो पानी हम पी रहे हैं, अगर हमारे पास इस तरह की इस्तात है कि हम जो मिनरल वाटर है वही हम इस्तेमाल कर ले, और एक हद तक हम खुद को तसल्ली दें कि ये जो पानी हम पी रहे हैं ये हम साफ़ पानी पी रहे हैं, तो इसी तरीके से हम खुद को बचा सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं, जो छोटे होते हैं सबको हम इस तरीके से, जितने भी इससे रिलेटेड बीमारियां हैं, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, काफ़ी हद तक हम इसको काबू इस पे हम पा सकते हैं।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फजलुल्ला खान के बारे में आपको बताएं कि वो तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में महारत इसी में हासिल कर रहे हैं जो माहौलियात में फैलने वाली बीमारियां और इस सिलसिले के मुख्तलिफ जो अज्जा उसके जो होते हैं, इस सिलसिले में आपने महारत हासिल की है, और शुक्रिया अदा करते हैं आपका डॉक्टर साहब,
बहुत
और इंशाल्लाह
शुक्रिया।
कि जल्दी फिर से मुलाकात हो आपसे।